सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सवसाहूणं कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिर्णये जिनेणमिं वेयण महाहियारं विविहियारं परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये 12वीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार चल रहा है अपना। हम पृष्ठ संख्या 87 पर आए हैं, 87। हम अभी जो 11 स्थान है गुणश्रेणी के असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा वाले, उसको हम देख रहे थे। उसमें पहले स्थान पर कौन सा देखा था? सम्यक्तोत्पत्ति का काल, वहां तो मिथ्या दृष्टि लिया, अति विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जो अभी करण लब्धि मांडी है, पूर्व करण अनिवृत्ति करण में है, तो वो जीव उसकी जो गुणश्रेणी है, उससे आगे आगे के स्थान एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा असंख्यात गुणा है। दूसरे स्थान पर श्रावक यानी संयता संयत को लिया, तीसरे पर हाँ संयत या विरत। कल हमने जो देखा तो गुणश्रेणी के आयाम की बात है, यह हम निर्जरा की बात देख रहे हैं। पहले निर्जरा बताई, फिर वो उससे उल्टे क्रम से उसका आयाम दिखाता। तो तीसरे स्थान पर संयत को देखा था, चौथे पर अनंतानुबंधी का विसंयोजक लिया, उसके बाद दर्शन मोहनी का क्षपक लिया है, उसके बाद उपशमक यानी उपशम श्रेणी वाले तीन उपशम, फिर उपशांत कषाय लिया, फिर क्षपक श्रेणी वाले, फिर क्षीण कषाय गुणस्थान लिया, और उसके बाद जिन में दो किए, स्वस्थान जिन और यहाँ योग निरोध वाले जिन। और जो गोमटसार में अभी मैं जो ट्रांसलेशन कर रही हूँ ना, तो वहां पर उन्होंने समुद्घात वाले जिन ऐसा लिया है, केवली समुद्घात, वही समुद्घात वाले जिन है ना, केवली समुद्घात, एक तो स्वस्थान जिन और समुद्घात वाले ऐसा लिया, और यहाँ पर योग निरोध वाले लिया, ये उसमें दो में डिफरेंस है। अब पूरा नहीं निकलता, असंख्यात गुणा निर्जरा वहां भी होती है, यह वो अपेक्षा नहीं लिए उसको न लेते हुए योग निरोध वहां की बात चली। अब इनका जो गुणश्रेणी का आयाम है वो उल्टे क्रम में संख्यात गुणा, पहले हमने निर्जरा जो है वो असंख्यात गुणा देखी थी, निर्जरा का द्रव्य जिसको कहेंगे, कितने परमाणु निर्जरित हुए, तो उसको हम असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा, और वो गुणश्रेणी का आयाम कितना लंबा है, तो उल्टे क्रम से पहले पर योग निरोध वाले लेना और ये मिथ्या दृष्टि प्रथम उपशम सम्यक तो पूर्वी वाला लेना, उल्टे क्रम से वो संख्यात गुणा उसका होगा। अब यहां लास्ट जो सूत्र 196 उसको पढ़ना रह गया था, उससे दर्शन मोहोपशामक का गुणश्रेणी काल संख्यात चाहिए, और संख्यात हुआ है संख्यात जो गुण निकाल देना। संख्यात गुणा है क्योंकि हम संख्यात गुणा के क्रम से देख रहे हैं ना, असंख्यात गुणा तो हो ही नहीं सकता, ये तो सब सबका काल अंतर्मूर्त ही है, कितनी बार संख्यात गुणा हुआ इतनी बार तो भी वो अंतर्मूर्त से बड़ा नहीं होगा। और हम उसी प्रकरण में समय ज्ञान चंद्रिका में जघन्य छोटे में छोटा अंतर्मूर्त कितना हम देखते हैं, आवली एक समय उन्हें आवली को कहा है, वहां पर एक आवली को जघन्य अंतर्मूर्त कहा है, हाँ समय ज्ञान चंद्रिका में एक आवली को जघन्य अंतर्मूर्त कहा। आवली और एक समय से लेकर बड़े अंतर्मूर्त में एक समय कम, वहां तक सारे मध्यम विकल्प कहे। एक आवली को जघन्य अंतर्मूर्त कहा और आवली प्लस एक समय वो मध्यम अंतर्मूर्त के भेद वहां से शुरू हो गए। उत्कृष्ट ने एक मूर्त में एक समय कम तक वो तो उत्कृष्ट हुआ, और उसके और एक कम करो समय तो वो मध्यम होगी। मध्यम के भेद है ना, दो समय कम वो मध्यम वाला भेद हुआ, मध्यम में से उत्कृष्ट। हम आवली आदि के एक समय बोलते रहे ना, तो आवली को लेना जघन्य अंतर्मूर्त। तो वो कहते कितने भेद है, तो उत्कृष्ट में से जघन्य माइनस करो एक मिला दो, तो संख्यात आवली प्रमाण उसके भेद होते हैं, ऐसा आता है। क्योंकि उसकी संख्यात आवली कर दिए उसके उत्कृष्ट, उन्होंने वो श्वास में मल्टीप्लाई करके उसके मेजरमेंट करके उसका प्रमाण बताया है। अब आगे गुणकार क्या है, गुणकार संख्यात समय है, वो आगे का फुल स्टॉप बराबर करना उसको। विशेषार्थ, इसी का विशेषार्थ अभी कहते हैं। यहाँ मूल में गुण श्रेणी रचना का ज्ञान कराने के लिए तथा रचना के आकार मात्र को प्रदर्शित करने के लिए संदृष्टि दी है। ऊपर जो लिखा है ना, को गुणगारो संकेत जा समय इत्थ संदिट्ठी, ऐसी संदृष्टि है, ऐसा वहां लिखा था। संदृष्टि इस प्रकार है, अब उस संदृष्टि को विशेषार्थ से समझा रहे हैं। संदृष्टि ने उन्होंने वो जो कुछ वहां डायग्राम की है, फिगर बताई है, उसका बात है। तो गुणश्रेणी रचना कैसी होती है वो समझ में आवे, इसलिए यहाँ वो संदृष्टि दी है। गुणश्रेणी रचना दो प्रकार की होती है, एक तो उदयादि गुणश्रेणी रचना और उदयावली बाह्य गुणश्रेणी रचना। उदयादि का अर्थ होता है उदय के समय से लेकर गुणश्रेणी रूप से उसमें परमाणु दिए जाते हैं, और उदयावली के बाह्य का अर्थ होता है एक आवली प्रमाण उदय काल से, एक वर्तमान समय से, एक आवली काल कहलाता है उदयावली। उसने निषेक छोड़कर उसके ऊपर अंतर्मूर्त तक गुणश्रेणी रूप से परमाणु दिए जाते हैं, ऊपर के निषेकों में से नीचे आते हैं, तो उसको कहते हैं वो गुणश्रेणी, उसको उदयावली बाह्य गुणश्रेणी कहेंगे। इन दोनों विकल्पों को ध्यान में रखकर यह संदृष्टि दी गई है। यदि उदयादि गुणश्रेणी रचना होती है तो उदय समय से लेकर अंतर्मूर्त प्रमाण निषेकों की असंख्यात गुणित क्रम से प्रदेश रचना होती है, और यदि उदयावली बाह्य गुणश्रेणी रचना होती है तो उदयावली को छोड़कर आगे के अंतर्मूर्त प्रमाण निषेकों की असंख्यात गुणित क्रम से प्रदेश रचना होती है। इससे आगे प्रथम समय में असंख्यात गुणहीन प्रदेश निक्षिप्त होते हैं और तदनंतर एक एक न्यून क्रम से प्रदेश निक्षिप्त होते हैं। एक एक न्यून यानी एक एक चय न्यून चाहिए। ऊपर कुछ लिखा है क्या? ऊपर तो कुछ है नहीं। हाँ, एक एक चय से कम होता है, एक एक प्रदेश से तो कम होती नहीं है, एक एक चय से कम होता है। यहाँ चय शब्द जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, एक एक चय न्यून। हाँ नहीं नहीं, न्यून चय नहीं, एक एक चय न्यून। हाँ, एक एक चय न्यून क्रम से प्रदेश निक्षिप्त होते हैं, यही भाव इस संदृष्टि में निहित है। उन्होंने ये संदृष्टि आड़ी बताई है, हम हमेशा नीचे से ऊपर की ओर दिखते हैं, तो ये दो अलग अलग फिगर्स बनाने पड़ेगी। एक तो उदय के समय से लेकर अलग, उसको हम उदयादि कहेंगे, और दूसरी जो है वो उदयावली के बाहर। यानी दो कैसे, ये तो उदय का समय है, तो उदय के समय से ही लेकर इस तरह से रचना होगी, और फिर बाहर ऊपर इस तरह से दिए जाएंगे परमाणु। और उदयावली में, उदयावली के तो उतने ही रखना है जैसे उदयावली में जो होते हैं, उदयावली में भी इस क्रम से है ना, थोड़े टेपरिंग होते हैं हमेशा जो गोपुच्छ रचना होती है, और उसके ऊपर कैसे दिए जाएंगे गुणश्रेणी रूप से, यानी इस तरह से, और फिर ऊपर एक्चुअली यहां से नहीं, इससे कम हो गए क्योंकि ओरिजिनल जो निक्षेप होते हैं उसमें और दिए जाते हैं, तो उसकी रचना इस तरह से दिखेगी। हाँ, उन्होंने त्रिकोण बताया, फिर भी समझने के लिए अभी समझना, इस तरह से होनी चाहिए, ये नीचे से ऊपर, ये बीच में उन्होंने पहली जो दिए वो उदयादि दिखाई है, और उसी के आगे वो उदयावली के लिए वो छोटा हिस्सा स्क्वायर जैसा लिखा है, और फिर वो बढ़ते हुए, और फिर टेपरिंग, टेपरिंग जो है वो ऊपरी तन स्थिति वाले हैं। ना, अभी आगे बढ़ेंगे। उदयावली में देंगे तो भी ऐसा ही ऊपर ऊपर का टेपरिंग ट्रायंगल दोनों में आएगा, ये ऑप्शन इसमें है, ऊपर का तो सेम रहेगा दोनों के लिए, ये उन्होंने दो अलग अलग फिगर्स नहीं बनाकर एक ही में दोनों को बताने की कोशिश की है। पहला जो है लेफ्ट साइड का वो उदयावली वाला है, और बीच वाला है उदयावली के बाहर वाला है, एक ही जीव के एक साथ ये दोनों तो नहीं हो गए एक ही जगह में, फिर भी समझाने के लिए उन्होंने यहां बताया है। और फिर राइट साइड का जो है वो ऊपरी तन स्थिति वाला है, इस प्रकार प्रथम चुलिका समाप्त हुई। अब द्वितीय चुलिका की प्ररूपणा करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, एतो अनुभाग बंजज्जवसान ठाण परुवणदाये तथ इमानी वारस अनुयोग दाराणी, बारस कहते के वारस ही कहते, बारस चाहिए इसमें, वारस हुआ है ना, बारस आगे शब्द आया है बारस प्राकृत भाषा में, ये हिंदी वाले कभी कभी को वो कर देते हैं। हम पढ़ेंगे, देखो इसके आगे अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान की प्ररूपणा का अधिकार है, हमने पहले स्थिति बंध अध्यवसान स्थान की बात देखी थी, अब यहाँ पर अनुभाग की बात चलेगी, बारस है आगे भी शब्द आया, आप पीछे भी देखा आपने, अच्छा चलो, देखो इसके आगे अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान की प्ररूपणा का अधिकार है, उसमें ये 12 अनुयोग द्वार हैं, उनके नाम आगे के सूत्र में बताएंगे। अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान कहने पर अनुभाग स्थानों का ग्रहण करना चाहिए, अलग अलग अनुभाग के जो अलग अलग वेरिएशन स्थान होंगे उसको यहाँ ग्रहण करना चाहिए। शंका, अनुभाग बंध स्थानों की अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान संज्ञा कैसे संभव है? समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि कार्य में कारण का उपचार करने से उनकी वह संज्ञा बन जाती है। कार्य क्या है? अनुभाग का बंध, अलग अलग अनुभाग सहित जो बंध होता है, किसी में जगह ने किसी के उत्कृष्ट और किसी के इन बिटवीन, तो ये जो अलग अलग अनुभाग बंध क्यों बंधा है, तो उसको अनुभाग बंध के कारणभूत जो परिणाम है उसको अनुभाग बंध अध्यवसान कहे। तो ये जो कार्य हुआ अनुभाग बंध, उसमें कारण का उपचार करके अनुभाग बंध स्थानों को ही अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान कह दिया है। शंका, और यहां से अभी चूली का प्रारंभ हुई है, विदिया चूली है ना, विदिया, वहां भी विदिया के बदले विदिया लिखा, वहाँ पर भी बिदिया करना चाहिए, बिदिया चुलिया। पीछे है क्या उसके लिए कुछ? हाँ, वी 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 है। अच्छा, तदिया विदिया पांच में पढ़ोमा चुलिया विदिया चुलिया। ठीक है, अभी हम यानी यहाँ द्वितीय चुली का यहाँ शुरू हो जाती है ना, पहले समाप्त होकर। तो शंका पूछता है शंकाकार की, ये चुली का क्यों लिख रहे यहाँ पर? समाधान, पहले तीन अनुयोग द्वारों में अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थानों की सूचना मात्र की है। वहाँ उत्कृष्ट भी बताया, जघन्य भी बताया, और जघन्य उत्कृष्ट एक साथ उसकी अल्प भूत्व वगैरह बता दिया, प्ररूपणा नहीं की। अजघन्य अनुत्कृष्टों की प्ररूपणा नहीं बताई थी, उत्कृष्ट बताया, जघन्य बताया, उसमें अल्प भूत्व बता दिया था। तो अजघन्य और अनुत्कृष्ट होते हैं इतना ही कहा था, जो हमने पहले 169 सूत्र बनाए थे, भंग देखे थे ना उसमें, तो उसमें अनुत्कृष्ट होता है या उत्कृष्ट होता है, इतनी बात बताई थी, उसकी प्ररूपणा नहीं की थी। अतएव उनकी प्ररूपणा करने के लिए इस चूलिका का अवतार हुआ है, क्योंकि अन्यथा अनुक्त समानता का प्रसंग आता है। अनुक्त यानी नहीं कहना, नहीं कहा हुआ। उनकी प्ररूपणा करने पर भी 12 ही अनुयोग द्वार होते हैं, क्योंकि और दूसरे अनुयोग द्वारों की संभावना नहीं है। उन अनुयोग द्वारों का नाम निर्देश आगे के सूत्र द्वारा करते हैं। अब वो सूत्र पढ़ेंगे हम। अविभाग परिच्छेद परुवणा, ठाण परुवणा, अंतर परुवणा, कंडय परुवणा, ओजचुम्ब परुवणा, छठाण परुवणा, हेठाठाण परुवणा, समय परुवणा, वड्ढी परुवणा, जवमज्ज परुवणा, पज्जवसान परुवणा, अप्पा बहुत ये ती। अब यहाँ 12 नाम बता रहे हैं। अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा, स्थान प्ररूपणा, अंतर प्ररूपणा, कांडक प्ररूपणा, ओजयुग्म प्ररूपणा, षट्स्थान प्ररूपणा, अधस्तन स्थान प्ररूपणा, समय प्ररूपणा, वृद्धि प्ररूपणा, यवमध्य प्ररूपणा, पर्यवसान प्ररूपणा और अल्प बहुत्व। ये 12 नाम बताए। अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा किस लिए की गई है? तो कहते एक एक अनुभाग बंध स्थान में इतने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, यह बतलाने के लिए उक्त प्ररूपणा की गई है। देखो, अनुभाग बंध स्थान यानी विशिष्ट अनुभाग वाला स्थान, तो वो अनुभाग हम नापेंगे किस में, उसका कोई यूनिट तो होना चाहिए, तो उसको कहते अविभाग प्रतिच्छेद। कर्मों के फल देने की शक्ति को यहाँ हम उसके अपने अविभाग प्रतिच्छेद, हर एक के अपने अपने होते ना, जैसे ज्ञान गुण की शक्ति भी ज्ञान के अपने अविभाग प्रतिच्छेदों में मापते हैं। तो हर एक की जो शक्ति है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ बताएंगे, उसको कहा है अविभाग प्रतिच्छेद। स्थान प्ररूपणा किस लिए की गई है? सभी अनुभाग बंध इतने ही होते हैं, यह बतलाने के लिए उक्त प्ररूपणा की गई है। सभी अनुभाग बंध इतने ही होते हैं, अनुभाग बंध के स्थान इतने ही होते, ऐसा सभी में वो स्थानों की बात चल रही है। यानी किसी ने जघन्य अनुभाग किया, किसी ने थोड़ा ज्यादा अनुभाग बांधा, किसी ने और ज्यादा बांधा, तो ये जो अलग अलग स्थान है बंधों के, तो सभी अनुभाग बंध के जो स्थान है वो इतने ही होते हैं, यह बतलाने के लिए उक्त प्ररूपणा की गई है। ऊपर क्या लिखा है? अनुभाग बंध ठाणानी सौवाणी भी एतिवाणी भी चेव, अनुभाग बंध स्थान करना। स्थान शब्द डालना बीच में, अनुभाग बंध स्थान। यह बतलाने के लिए, बतलाने के लिए के जानावनठम आगदा। आगे की प्ररूपणा, अंतर प्ररूपणा किस लिए की गई है? एक एक स्थान का संख्यात असंख्यात व अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों के द्वारा अंतर नहीं होता। क्या कहते हैं, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान में कितना अंतर हो सकता है उसके बारे में, संख्यात असंख्यात और अनंत नहीं होता, परंतु सब जीवों से अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेदों से अंतर को प्राप्त होकर दूसरा स्थान उत्पन्न होता है। यह जतलाने के लिए अंतर प्ररूपना की है। एक स्थान और दूसरे स्थान में कितना अंतर है? सब जीवों से अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेदों का अंतर है। एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ने वाला, एक स्थान की बात चल रही है ना, एक स्थान में क्या होता है तो हम वर्ग वर्गणा स्पर्धक गुणहानि उसकी बात करेंगे, पर एक स्थान से दूसरा स्थान कितना ज्यादा है। जैसे हमने योगों में स्थान देखे थे, एक योग स्थान में हमने वहां सारी रचना देखी थी, वहां भी वर्गणा और स्पर्धकों की रचना की थी, और फिर वो सुचंगुल के असंख्यात विभाग इतना अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा बताया था। यहाँ क्या कहते, एक स्थान में क्या क्या है, किसी भी एक अनुभाग स्थान में क्या है, तो वो पूरा स्थान कैसे बताएंगे? तो अनुभागों की रचना बताएंगे, तो परमाणुओं को वर्ग कहते हैं क्योंकि उसमें अनुभाग पाया जाता है, अविभाग प्रतिच्छेद पाया जाता है। ऐसे अनंत वर्गों जिसमें समान समान अनुभाग है, जघन्य में जघन्य, उसको हम पहली वर्गणा कहेंगे। फिर एक अविभाग प्रतिच्छेद वाली, अधिक वाली दूसरी वर्गणा, और तीसरी वर्गणा, चौथी वर्गणा, ऐसी अनंत वर्गणा हो जाएगी। जहां अविभाग प्रतिच्छेद दो गुना होता है, वहां से दूसरा स्पर्धक शुरू हो जाता है, फिर तीसरा स्पर्धक, चौथा स्पर्धक। परमाणु की जितनी संख्या वो जब आधी होती है वहां तक गुणहानि हो जाती है। ऐसे एक गुणहानि, दो गुणहानि, नाना गुणहानि होती है। ये पूरा मिलकर एक अनुभाग स्थान कहलाएगा। इस अनुभाग स्थान से इसके आगे वाला अनुभाग स्थान, उसमें कितना अनुभाग बढ़ जाता है, तो ये कहते हैं सब जीवन से अनंत गुणे हैं। ये दो स्थानों के बीच में कितना अंतर है उसकी बात चल रही है। हाँ, एक स्थान से दूसरा स्थान कितना अधिक अविभाग प्रतिच्छेद वाला है उसकी बात है। अब कहते ये तो आगे आने वाला है विषय विस्तार से। अब यहाँ तो हर एक 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 जो प्ररूपणा है, 12 जो अनुयोग द्वारे है, उसका कहने का प्रयोजन बता रहे हैं। कांडक प्ररूपणा किस लिए आई है? अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र एक कांडक होता है। पुनः एक कांडक के प्रमाण से अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणवृद्धि और अनंत गुणवृद्धि, इन वृद्धियों को करके देखने पर वे निरग्र होती है, यह बतलाने के लिए कांडक प्ररूपणा आई है। उसकी डिटेल्स तो जब हम वो प्ररूपणा देखेंगे तभी आ जाएगी। हाँ हाँ, अग्र रहित यानी अभी देखेंगे वहां पर। यानी वो कोई निशेष, जैसे हम कहते हैं ना निशेष भाग जाता है, वैसे वही निरग्र की कोई बात है। क्या कहते हैं आप? पहले अग्र शब्द भी आया था एक बार, अग्र शब्द की चर्चा आई थी। अंतिम के लिए अग्र आता है क्या है ऐसे? ठीक है, ये कांडक प्ररूपणा में जो देखेंगे ना तभी वो उसकी बात क्लियर हो जाएगी ज्यादा। ओज युग्म प्ररूपणा किस लिए आई है? सब अनुभाग स्थान, सब अविभाग प्रतिच्छेद, वर्गणाएं, स्पर्धक और कांडक कृतयुग्म ही होते हैं। ये तो पहले भी बात आई थी। ओज युग्म नाम क्यों दिया है? वो ओजह के युग्म है ये बताने के लिए। तो इसमें जितनी सारी बातें आएगी वो तो कृतयुग्म राशि ही होती है सभी। अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या भी कृतयुग्म राशि होगी, वर्गणाओं की संख्या, स्पर्धकों की संख्या, कांडक की, सब। षट्स्थान प्ररूपना किस लिए आई है? अनंत भाग वृद्धि के स्थानों में वृद्धि का भागहार सर्व जीव राशि है। हम कहते हैं अनंत भाग वृद्धि, कौन से अनंत से भाग देने पर उतना एक एक भाग पड़ेगा? हाँ, तो जीव राशि से उसको भाग देंगे उतना। असंख्यात भाग वृद्धि के स्थानों में वृद्धि का भागहार असंख्यात लोक है। असंख्यात लोक से भाग देने पर जितनी संख्या आएगी उतनी उसमें ऐड कर दो तो उसको हम कहेंगे असंख्यात भाग वृद्धि। संख्यात भाग वृद्धि स्थानों में वृद्धि का भागहार उत्कृष्ट संख्यात है। संख्यात गुण वृद्धि के स्थानों में वृद्धि का गुणकार उत्कृष्ट संख्यात है। असंख्यात गुण वृद्धि के स्थानों में वृद्धि का गुणकार असंख्यात लोक है। वृद्धि का गुणकार यानी वो जो कितने गुणा होती है वो गुणकार का प्रमाण। हाँ, अभी गुण वृद्धि चल रही है। तथा अनंत गुण वृद्धि के स्थानों में वृद्धि का गुणकार सर्व जीव राशि है। भाग कहो या गुणा कहो, अनंत में सर्व जीव राशि को लेना है, असंख्यात में असंख्यात लोक को लेना है, संख्यात में उत्कृष्ट संख्यात को लेना है। यह बतलाने के लिए षट्स्थान प्ररूपणा आई है। अधस्थान स्थान प्ररूपणा किस लिए आई है? कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धियां होने पर असंख्यात भाग वृद्धि होती है। ओहो हो, कांडक यानी वो कांडक, मैं तो कांडक घात वाला कांडक सोचती थी, सॉरी। देखो ये षट्स्थानों में क्या होता है, हमने जैसे देखा था, अभी पहले वाले याद करो, हमने जो देखे थे षट्स्थान वृद्धि के, तो ज्ञान मार्गणा में भी हमने देखे थे ना, तो अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि कितनी बार होता है? सूचंगुल के असंख्यात भाग बार, उसको एक कांडक कहा। फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि हुई, फिर एक कांडक बार यानी एक कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धि होगी, फिर दूसरी बार असंख्यात भाग वृद्धि। ऐसे असंख्यात भाग वृद्धि का भी एक कांडक हो जाएगा, एक कांडक यानी वो भी जब सूचंगुल के असंख्यात भाग बार हो जाएंगे, ये पूरा प्रमाण दोबारा वो दोहराने नहीं है, तो उसको एक कांडक कहा। तो ऐसे कांडक कितने हो गए? एक बार अनंत गुण वृद्धि होती है उसमें अनंत भाग वृद्धि के कांडक कितने हो गए? असंख्यात भाग वृद्धि के कांडक कितने हो गए? संख्यात, उसको ये कांडक प्ररूपणा कहा। यहां बात आई ना? देखो अंगुल के असंख्यात भाग मात्र एक कांडक होता है, वहां भी हमने सूचंगुल का असंख्यात भाग देखा था, प्रमाण तो वही है। ये जो षट्स्थान गुणी षट्स्थान पतित वृद्धि होती है उसमें कितनी बार होने पर वो आगे आगे वाला आता है, तो कांडक का प्रमाण कितना है? तो अंगुल का असंख्यात भाग यानी सूचंगुल के असंख्यात भाग, इतने स्थान जाने पर अनंत भाग अनंत भाग अनंत भाग अनंत भाग वृद्धि जाने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है तो उसको कहते वो कांडक का प्रमाण सूचंगुल के असंख्यात भाग वाला इतना है। नहीं समझे? देखो वो हमने ऊ चार देखा था ना, ऊ का अर्थ है एक कांडक हुआ, एक कांडक हुआ, तो एक कांडक जाने पर असंख्यात भाग वृद्धि का एक स्थान आया, फिर अनंत भाग वृद्धि का एक कांडक और चला जाएगा, फिर असंख्यात भाग वृद्धि की दो हो जाएगी, फिर एक कांडक हो जाएगा, फिर तीन, इस तरह से असंख्यात की, हाँ उसका भी एक कांडक जब पूरा होगा, हाँ तब फिर अनंत भाग वृद्धि का एक कांडक जाकर संख्यात भाग वृद्धि का एक स्थान आ जाएगा। संख्यात, असंख्यात की बात बताई ना, असंख्यात के कांडक पूरा हो गया, तो असंख्यात का कांडक पूरा होते ही इमीडिएट संख्यात भाग वृद्धि नहीं होती, फिर वो एक कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धि के स्थान जाएंगे और फिर जाके संख्यात भाग वृद्धि का स्थान आएगा। ये ऊ चार ऊ पांच ये जो हमने टेबल देखा था वैसे ही होगा यहाँ पर, तो उसको कहते ऊपर हमने देखा था ना, एक कांडक के प्रमाण से इनको इन वृद्धियों को करके देखने पर इन कांडक के प्रमाण से ने सुचंगुल के असंख्यात में भाग बार ये हो जाएगा, तब आगे वाली वृद्धि होगी, फिर वो सुचंगुल के असंख्यात में भाग बार हो जाएगी तो उसके आगे वाली वृद्धि होगी। इस तरह से करके देखने पर वे निरग्र होती है, ऊपर देखा ना हमने, वे निरग्र होती है ने, वे वृद्धियां निरग्र होती है बतलाने के लिए ने, उतने कांडक उसमें पाए जाते हैं, ऐसे ने बीच में थोड़े लूज छुड़ गए ऐसा नहीं, वो तो उतने होने पर ही वो अनंत भाग लास्ट में अनंत गुणा वृद्धियां होती ना, तो उसमें वो सब समा जाएंगे। हमने पहले भी देखा था, एक बार अनंत गुणा वृद्धि होती है तो सुचंगुल के असंख्यात भाग प्लस वन, इसको पांच जगह रखकर आपस में गुणा करो, इतने स्थान चले जाते हैं सब मिलकर। देखो अभी हमने षटस्थान प्ररूपणा की भी बात देखी, यानी उसमें अनंत भाग कहते हैं, असंख्यात भाग कहते हैं, संख्यात भाग कहते हैं या गुणा कहते हैं, तो उसमें उसका क्या प्रमाण है उसको भी बता दिया। अब अधस्तन स्थान प्ररूपणा किस लिए आई है, नीचे का पैराग्राफ, कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धियां होने पर, अभी कांडक का अर्थ समझ में आया ना, यानी सुचंगुल के असंख्यात वे भाग बार अनंत भाग वृद्धियां होने पर असंख्यात भाग वृद्धि है होती है, कांडक प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धियां होने पर संख्यात भाग वृद्धि होती है, कांडक प्रमाण संख्यात भाग वृद्धियां होने पर संख्यात गुणों वृद्धि होती है। ये तो समझाना आसान हो गया ना, कांडक का नाम लिया तो, और कांडक प्रमाण संख्यात गुण वृद्धियां होने पर असंख्यात गुण वृद्धि होती है, तथा कांडक प्रमाण असंख्यात गुण वृद्धियां होने पर अनंत गुण वृद्धि होती है, यह दिखलाने के लिए उक्त प्ररूपणा आई है। असंख्यातवा भाग प्लस वन लेना हर एक बार, सुचंगुल का असंख्यातवा भाग प्लस वन, ये सुचंगुल के असंख्यात भाग की ये साइन है, ये प्लस वन की साइन है, इसको ऐसा पांच बार रखो आपस में गुणा करो, तो उतने स्थान चले जाएंगे तब अनंत गुण वृद्धि का एक स्थान आएगा। वहां लिखते समय उन्होंने उसके घन को उसके वर्ग से गुणित करो ऐसा लिखा था, इसके घन को इसके वर्ग से गुणित करो, यानी पांच बार या दिस रेस टू फाइव लिखेंगे तो भी वही आएगा ना। मैंने उसमें ब्रैकेट में लिखा है, मैंने ट्रांसलेशन किया था अभी, ये भाग उसमें आई थी बात नहीं, उसमें बीच में ये विषय आया है, उसमें लिखा है उन्होंने, आगे समझाऊंगा, परंतु उसमें लिखा है वर्ग को घन से गुणित करना, तो उसमें ब्रैकेट में लिख दिया है, जो हम इटैलिक में लिखते हैं ना, तो रेस टू फाइव या आपस में पांच बार गुणा करना इस तरह। हम जिससे फैमिलियर है परिचित है उस भाषा में लिखेंगे तो जल्दी समझ में आता, नहीं तो वर्ग क्या होगा घन क्या होगा वो गुणा क्या करना है ऐसा लगता है ना। आगे ऐसे करके दिखाएंगे तो आसान है। देखो समय प्ररूपणा किस लिए आई है, ये अनुभाग बंध स्थान, वो ध दिख रहा है क्या बराबर, ये अनुभाग बंध स्थान जघन्य रूप से इतने काल तक बनते हैं और उत्कृष्ट रूप से इतने काल तक बनते हैं, यह जतलाने के लिए समय प्ररूपणा आई है, यानी जघन्य 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 बनता रहे तो कितने काल तक वो जघन्य बन सकता है अधिक से अधिक, उसको वो समयों की प्ररूपणा करेंगे। हमने योग में भी ऐसा देखा था ना, उसी योग में रहने काल निरंतर काल, तो कोई दो समय से लेकर आठ समय तक रह सकता है, वैसे यहां भी जघन्य 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 कितने समय तक बंधेगा उसकी बात है। वृद्धि प्ररूपणा किस लिए आई है, अनुभाग बंध स्थानों में अनंत भाग वृद्धि और अनंत भाग हानि से लेकर वृद्धियां व हानियां छह ही होती है, इनका बंध काल जघन्य व उत्कृष्ट रूप से इतना है, यह जतलाने के लिए वृद्धि प्ररूपणा आई है। यव मध्य प्ररूपणा किस लिए आई है, अनंत गुण वृद्धि में काल एवं मध्य का प्रारंभ होकर वह अनंत गुणहानि में समाप्त होता है, यह बतलाने के लिए यह मध्य प्ररूपणा आई है। पर्यवसान प्ररूपणा किस लिए आई है? सब समय स्थानों का पर्यवसान अनंत गुणित के ऊपर अनंत गुणा होगा तब पर्यवसान होता है, यह बतलाने के लिए पर्यवसान प्ररूपणा आई है। अल्प बहुत्व किस लिए आया है? एक षट स्थान में अनंत गुण वृद्धि आदि स्थानों के अल्प बहुत्व की प्ररूपणा करने के लिए आया है। कितनी बार षट स्थान वृद्धि होती है इस तरह से अल्प बहुत्व कहेंगे वहां पर। यह देशामर्शक सूत्र है। देखो 12 से कम नहीं चलेगा तो इसमें और भी बातें आने वाली। कौन से? अतएव बंध समुत्पत्तिक, हत समुत्पत्तिक और हत हत समुत्पत्तिक, इन तीनों ही स्थानों में इन 12 अनुयोग द्वारों की प्ररूपणा करनी चाहिए। तीनों में 12-12 लगाने हैं। उनमें पहले बंध स्थानों में इन अनुयोग द्वारों को कहेंगे, क्योंकि बंध से उद्धव बराबर करना सत्व की उत्पत्ति देखी जाती है। पहले बंध होगा तभी वो सत्ता में आएगा ना, इसलिए बंध की प्ररूपणा पहले करेंगे। अब उसमें पहला प्रकरण अविभाग प्रतिच्छेदों का है। अविभाग परिच्छेद परुवणदाये एक कम्मी ठाणम्मी केवड़िया अविभाग परिच्छेदा अनंता अविभाग परिच्छेदा सव जीवे ही अनंत गुणा एवदिया अविभाग परिच्छेदा। अर्थ उसका अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा का प्रकरण है। एक एक स्थान में कितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं? तो कहते हैं अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। जो सब जीवों से अनंत गुणे होते हैं इतने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। अब जघन्य अनुभाग बंध स्थान का आश्रय लेकर अविभाग प्रतिच्छेदों के प्रमाण की प्ररूपणा करते हैं। सबसे जघन्य अनुभाग स्थान है उसमें कितने हैं उसकी बात बताएंगे। शंका, ऊपर बिंदी लगाना श के ऊपर। अनुभाग किसे कहते हैं? उसका समाधान, आठों कर्मों और जीव प्रदेशों के परस्पर में अन्वय यानी एक रूपता के कारणभूत परिणाम को अनुभाग कहते हैं। अनुभाग किस में होगा? हाँ, तो कर्मों को लेना यहाँ पर। शंका, यहाँ पे बिंदी नहीं है वो देना। प्रकृति अनुभाग क्यों नहीं होती? प्रकृति को ही अनुभाग क्यों नहीं? हाँ देखो, आठों कर्मों और जीव प्रदेशों के परस्पर में एकरूपता के कारणभूत परिणाम, उसको अनुभाग कहा है। तो एकरूपता का कारणभूत क्या? उसका ये निमित्त है जो राग द्वेष के कारण वो बंधे हैं। तो वो तो अध्यवसाय, उसको हमने अध्यवसान स्थान के लिए एक उसका कारण बताया ना, अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान, वो जीव में होगा। और अनुभाग का जो बंध है वो कर्म में होगा। तो इस तरह से दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, दोनों में लेना पड़े। हाँ, तो कहते प्रकृति अनुभाग क्यों नहीं होती? प्रकृति को ही अनुभाग क्यों नहीं कहते? ज्ञानावरण अनुभाग नहीं हो सकता क्या? तो कहते हैं नहीं, क्योंकि प्रकृति योग से योग के निमित्त से उत्पन्न होती है, अतएव उसकी कषाय से उत्पत्ति होने में विरोध आता है। कारणभूत परिणाम में कषाय को लेना है, योग को नहीं लेना, क्योंकि प्रकृति के कारणभूत परिणाम में हमने योग को लिया था, अब यहां कषाय को लेना। भिन्न कारणों से उत्पन्न होने वाले कार्यों में एकरूपता नहीं हो सकती क्योंकि इसका निषेध है। ये भिन्न कारण हुआ, प्रकृति का कारण है योग और अनुभाग का कारण है कषाय। दूसरी बात, अनुभाग की वृद्धि प्रकृति के वृद्धि में निमित्त होती है, क्योंकि उसके महान होने पर प्रकृति के कार्य रूप अज्ञानादि की वृद्धि देखी जाती है, इस कारण प्रकृति अनुभाग नहीं हो सकती, ऐसा जानना चाहिए। क्या कहते हैं? अनुभाग की वृद्धि प्रकृति की वृद्धि में निमित्त होती है, क्योंकि उसके महान होने पर प्रकृति के कार्य रूप अज्ञान आदि की वृद्धि देखी जाती है। महान होने पर यानी अधिक होने पर, प्रकृति का कार्य यानी ज्ञानावरण का कार्य क्या है, अज्ञान आदि, उसकी वृद्धि देखी जाती है, उसका फल अधिक देखे जाता है, इस कारण प्रकृति अनुभाग नहीं हो सकती, ऐसा यहां जानना चाहिए। शंका, परस्पर स्पर्श के हेतुभूत गुण को यदि अनुभाग स्वीकार किया जाता है तो उदयावली में स्थित प्रदेशाग्रहों के उत्कृष्ट अनुभाग के अभाव का प्रसंग आता है। क्या कहते हैं? परस्पर स्पर्श का हेतुभूत गुण, किसने किसको परस्पर स्पर्श हुआ है यहां पर? हाँ, कर्मों के परमाणु और जीव के प्रदेश बंद हुआ है ना। अभी इसकी भाषा में स्पर्श कहेंगे, वो समयसार वाला स्पर्शता नहीं, वो बात यहां नहीं लेनी है। अभी दोनों का एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध हुआ है और कुछ काल तक रहेगा, उन्होंने एक दूसरे को स्पर्श किया है, एक दूसरे के साथ बंधे है, तो बंधने के कारणभूत जो वहां पर गुण है उसको यदि हम अनुभाग स्वीकार करते हैं, ये तो उन्होंने पहले बताया भी था, परिभाषा उसकी दी थी, तो शंकाकार की शंका क्या है कि जो उदयावली में प्रदेशाग्रह है वो कैसे है? अभी छूटकर चले जाने वाले हैं, तो वो तो छूटने का कार्य हो रहा है। यदि अनुभाग के कारण बंध मानो तो जो छूट रहे परमाणु हर समय निर्जरा होती है ना, खिरते हैं, तो खिरने वाले परमाणुओं में अनुभाग नहीं है, ऐसा सिद्ध हो जाता है, ऐसा उसका कहना है। शंकाकार की शंका ख्याल में आती है? अनुभाग को हम बंध का कारण, अनुभाग के कारण दोनों बनते, ऐसा अगर कहेंगे, बंधने को अनुभाग कहते हो, क्यों उसमें विशिष्ट जो कुछ गुण है, एक में कषाय और दूसरे में उसका अनुभाग है, तो वो उसको अगर आप मानते हो कि उसके कारण वो जुड़ गए हैं, तो जो अभी कर्म परमाणु जिसका अभी स्थिति पूरी हो गई है, अभी उदय में आ रहे हैं ना, तो उदय में आ रहे ने वो खिर रहे हैं, खिर रहे नहीं जुदा हो रहे, तो जुदा होने वालों में अनुभाग नहीं है, ऐसा प्रसंग आएगा, ऐसे उसका कहना है, शंकाकार की शंका है। जिस गुण के कारण वो इकट्ठे हुए हैं, वो गुण खलास हुआ तभी तो वो पिछुड़ गए, ऐसा मानना पड़ेगा, अभी उसका समाधान करेंगे। ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्थिति के क्षय से परस्पर स्पर्श का अभाव होता है, ऐसा नियम नहीं बनता, क्योंकि एक क्यों बिछुड़ रहे हैं, वो स्थिति पूरी होने के कारण बिछुड़ रहे हैं, यानी उनमें अनुभाग नहीं है, ये बात नहीं है, अनुभाग नहीं होता तो उसका फल रूप जो निमित्तपना बनना है वो भी नहीं बनता। अब ऐसा यदि ऐसा आप मानोगे तो ऐसा नियम नहीं बन सकता, यानी ऐसा नियम है, यदि ऐसी आशंका करोगे तो वो नियम नहीं बन सकता था, परंतु नियम तो है, क्यों कि स्थिति पूरी होने पर वो दोनों का स्पर्श का अभाव होता है ना, वो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए है, वो बंध समाप्त हो जाता है, छूट जाता है उसका। एक परमाणु में जो जघन्य रूप से अवस्थित अनुभाग है उसकी अविभाग प्रतिच्छेद संज्ञा है, स्थान में जघन्य रूप से अवस्थित अनुभाग की अविभाग प्रतिच्छेद संज्ञा नहीं है, क्योंकि वहां निर्विकल्प रूपता नहीं उपलब्ध होती। क्या कहना चाहते हैं? एक स्थान में तो बहुत सारे परमाणु है, वर्ग है, वर्गणाएं है, उसमें स्पर्धक है, गुणहानि है, बहुत एक पूरे स्थान में। तो एक स्थान में जितना अविभाग प्रतिच्छेद है, जितना अनुभाग है, उसको अविभाग प्रतिच्छेद नहीं कहा, परंतु एक एक परमाणु में जितनी शक्ति है एक एक परमाणु की, उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहा है। और वो में जगन्य जो है उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहा। प्रत्येक परमाणु में शक्ति है अपनी अपनी, किसी में जगन्य, किसी में यूनिट बता दे। देखो अब इस अविभाग प्रतिच्छेद के प्रमाण से जगन्य अनुभाग स्थान का विभाग करने पर वहां सब जीवों से अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। ये उसका यूनिट हुआ। जगन्य में जगन्य जितना अनुभाग पाया जाएगा किसी परमाणु में, उसके कितने कितने पाया जाता है वहां अनुभाग। तो जो जीव की अनंत राशि है ना, सब जीवों की संख्या कितनी है, तो अनंत है, तो उससे अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेद वहां पाए जाते हैं। अविभाग प्रतिच्छेद का माप कैसे निकालना? किसी परमाणु में जगन्य में जगन्य जितना अविभाग प्रतिच्छेद होगा उसके अनंत विभाग वो जीव राशि है। जीव राशि के अनंत गुणा अविभाग प्रतिच्छेद जगन्य में होते हैं। तो ये अविभाग प्रतिच्छेदों का इतना प्रमाण है। ये एक दो नहीं होगे, वहां कितने होंगे? अनंत होंगे। जगन्य में भी स्थान की बात नहीं है, किसी परमाणु में अविभाग प्रतिच्छेद जगन्य में जगन्य हो तो वो कितने हैं? तो जीव राशि से अनंत गुणे हैं। स्थान पूरे कषाय के परिणाम, एक स्थान की, स्थान के अविभाग प्रतिच्छेद अलग है। स्थान में तो कितनी है? एक परमाणु, ऐसे अनंत परमाणुओं का एक वर्गणा होती है, ऐसे अनंत वर्गणाओं का एक स्पर्धक होता है, ऐसे अनंत स्पर्धकों की गुणहानि होती है, और ऐसे कितनी अनंत गुणहानियां होती है। अविभाग संबंधी गुणहानि की बात चल रही है। स्थिति संबंधी में तो असंख्यात में हमने देखी, वो छह माइनस व छह, वो स्थिति में देखा हमने, निषेकों में देखा। यहाँ अनुभाग की चर्चा चल रही है। जगन्य अनुभाग कितना है? तो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है उसमें। जगन्य में जगन्य अनुभाग भी कितना है? अनंत अविभाग प्रतिच्छेद इतना है। आप संख्या देख रहे हैं, उसमें से एक परमाणु में अनुभाग कितना है। अब यहां हम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये उस परमाणु ग्रहण किए, उसमें से एक परमाणु अलग निकालो। अच्छा, अभी उसमें क्या बता रहे हैं? जो जगन्य अणु अविभाग प्रतिच्छेद है उसकी संख्या कितनी है? जो पूरे जीव जितने हैं उससे भी अनंत गुना, और ये भी जानता है अनंत गुना वगैरह ओला। यानी परमाणु में जगन्य रूप से क्या है? अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह है कहेंगे। कितने अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह है? अनंत। कितना अनंत है? जीव राशि से अनंत गुणे वाला अनंत है। हाँ, कन्फ्यूजन है यहाँ पर। देखो पहले क्या लिखा था, एक परमाणु में जो जगन्य रूप से अवस्थित अनुभाग है, जगन्य रूप से अनुभाग है उसकी अविभाग प्रतिच्छेद संज्ञा, परंतु उसको एक अविभाग प्रतिच्छेद नहीं कहा है, उसको अविभाग प्रतिच्छेद में गिना है, बस इतना है। तो उसमें कितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं? तो कहेंगे जीव राशि से अनंत गुणे होते हैं। इसलिए अरविंद भाई कहते हैं यहाँ कन्फ्यूजिंग है। यस, इथ ताव दवट कहाँ गया? ऊपर था ना, तत्त्व एकम्य परमाणु जो जहन्नेन अवट्ठिदो अनुभागो, जन्नेन वट्ठिदो अनुभागो ठाणमी वहाँ क्या लिखा आ प्रत्यो वड्डी दो ता प्रतो वड्डी दो इति पाठा ठाणमी जेन वड्डी आ प्रत्यो ठाणमी जहन्ने न वड्डी इति पाठा। ओ देखो क्या कहना है इनको, ऐसा कहना है जो अन्य पाठ भी है ना कि किसी परमाणु में विशिष्ट अनुभाग है तो जगन्य में जगन्य कितनी वृद्धि हो सकती है उसमें अनुभाग की वृद्धि होकर एक परमाणु में अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गए, हाँ तो उसको कहते हैं वो जगन्य रूप से जो वृद्धि होगी उसी को अविभाग प्रतिच्छेद कहा, एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गया ऐसा कहेंगे। नहीं समझे? वो नहीं, कोई एक परमाणु है उसमें विशिष्ट अनुभाग है, अभी हम अनुभाग में बात करेंगे, और दूसरा वही परमाणु में वृद्धि हुई या दूसरे में जघन्य वृद्धि वाला कोई दूसरा परमाणु है तो कितनी वृद्धि हुई। हम कहते हैं ना एक एक वर्गणा के प्रति एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गया, तो अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गया, एक बढ़ गया तो एक इज इक्वल टू हाउ मच, जघन्य में जितनी वृद्धि हुई उतनी, समझ में आया ना? किसी परमाणु में विशिष्ट अनुभाग था, अभी हम नाम मापेंगे कैसे उसको, तो दूसरे परमाणु में या दूसरे वर्गणा में जो हम कहेंगे वहां के जितने वर्ग हैं वहां उसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गया ऐसा हम कहते हैं, तो जितना कुछ मिनिमम पॉसिबल बढ़ गया है, मिनिमम पॉसिबल वृद्धि है उसको एक अविभाग प्रतिच्छेद कहा। हाँ तो जगन्य स्थान में कितने उसको देखा? अनंत गुणी वृद्धि का प्रमाण नहीं है। देखो अभी ये एक यूनिट समझ में आया, ये एक अविभाग प्रतिच्छेद है, यहाँ 100 लिए और यहाँ 101 हुए, नहीं नहीं फिर इसको अविभाग प्रतिच्छेद मत कहो, अविभाग प्रतिच्छेद में कहना है इसको 100 अविभाग प्रतिच्छेद कहेंगे तो यहाँ 101 अविभाग प्रतिच्छेद ही कहना पड़ेगा। अब हम अविभाग प्रतिच्छेदों को भूल जाएंगे, हम यहाँ कहेंगे कि अभी दूसरा कोई हमारे पहचान वाला यूनिट देखेंगे, कोई किलो में या ग्राम में बात करेंगे, या 1000 ग्राम है और 1001 ग्राम हुआ तो वजन कुछ बढ़ा, मिनिमम बढ़ा, जो मिनिमम पॉसिबल बढ़ा है उसको हम 1 ग्राम कहेंगे, उसको हम एक अविभाग प्रतिच्छेद कहेंगे। इसमें जो डिफरेंस है ना, मिनिमम डिफरेंस को एक अविभाग प्रतिच्छेद कहा। अब ऐसे मिनिमम डिफरेंस वाला जो अविभाग प्रतिच्छेद जिसको हमने एक कहा, ऐसे उस परमाणु में जघन्य अनुभाग कितने हो सकते हैं? अभी जो एक जो हमने एक यूनिट बताया, ऐसे यूनिट इस जघन्य स्थान में कितने हैं? जैसे हमने यहाँ 1000 और 1000 मान लिए, डिफरेंस एक का था, अभी ऐसे एक एक करके यहाँ हमने 1000 ग्राम मान लिए थे, अभी ऐसे एक एक करके यहाँ कितने हो गए यूनिट्स? तो जीव राशि से अनंत गुणे हो गए, दैट इज मिनिमम अनुभाग किसी परमाणु में हो सकता है। नहीं, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद, वर्गों को हम परमाणु कहेंगे, परमाणुओं की संख्या अलग बात है, और अविभाग प्रतिच्छेद उस परमाणु में है, उसमें परमाणु को भी वर्ग कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा से, परंतु जब हम दूसरी वर्गणा में जाते हैं तो वर्ग नहीं बढ़ते, वर्गों के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हैं, तो एक यूनिट वहां बढ़ा तो कितने मिनिमम पॉसिबल बढ़ोतरी, हम उसको कहते ही है ना एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ा, उसका अर्थ ये वो मिनिमम पॉसिबल जितनी इंक्रीमेंट होती है उसी को एक अविभाग प्रतिच्छेद नाम दिया है। तो यहां जो लिखा ना, एक परमाणु में जो जघन्य रूप से अवस्थित अनुभाग है, ऐसा जो लिखा है, तो जघन्य रूप से जो वृद्धि का प्रमाण है उसको एक अविभाग प्रतिच्छेद कहा है। योग के प्रकरण में ऐसे ही परिभाषा आई थी कि एक योग में से दूसरे, एक प्रदेश अभी लेना, किसी जघन्य में जघन्य योग है और दूसरे किसी प्रदेश में थोड़ा ज्यादा योग है, मिनिमम पॉसिबल जो डिफरेंस है, वहां एक अविभाग प्रतिच्छेद कहा था। यहाँ पर हाँ, जीव राशि से अनंत गुणा, ऐसे एक एक करके कितने हैं अविभाग प्रतिच्छेद जघन्य अनुभाग वाले में। एक अविभाग प्रतिच्छेद कितना है वो नहीं बताए, एक अविभाग प्रतिच्छेद दो तीन चार ऐसे गिनो। तो जघन्य स्थान में यहाँ क्या लिखा, इस अविभाग प्रतिच्छेद के प्रमाण से, हमने पहले अविभाग प्रतिच्छेद का प्रमाण कितना है, मिनिमम पॉसिबल इंक्रीमेंट जितनी हो सकती है अनुभाग में, उसको कहा अविभाग प्रतिच्छेद। ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद, अभी उसका एक यूनिट बनाया हमने, ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद जघन्य अनुभाग के स्थान में कितने हैं। जघन्य अनुभाग स्थान का विभाग करने पर, यानी जघन्य अनुभाग जो स्थान है वहां ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद नापेंगे तो वो कितने हैं, तो कहते वहां सब जीवन से अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। एक वर्गणा में अभी यहां समझ सकते हैं, अभी जो जघन्य स्थान है उसमें कितने अविभाग प्रतिच्छेद है वो अभी बताएंगे। देखो जैसे हमने योग स्थान देखा था वैसे यहां अनुभाग स्थान देखना है। एक वर्गणा को एक स्थान नहीं कहा है, वो एक स्थान में क्या क्या आते हैं वो बात अभी बताएंगे। देखो यहां सर्वप्रथम द्रव्यार्थिक ने का आश्रय करके जो जघन्य स्थान है उसके अविभाग प्रतिच्छेदों के अवस्थान क्रम को कहते हैं, यानी वो किस तरह से अभी वो पूरा पढ़ेंगे ख्याल में आएगा। देखो यथा नैगम ने का आश्रय करके जो जघन्य अनुभाग स्थान है उसके सब परमाणुओं के समूह को एकत्रित करके स्थापित करें। जो हमने जघन्य अनुभाग स्थान कहा है अभी वो सब परमाणुओं को इकट्ठा स्थापित करेंगे। जैसे हमने निषेक रचना में स्थिति की अपेक्षा उसके अलग अलग चार्ट बनाए थे ना, उसकी रचना बताई थी, अब अनुभाग की अपेक्षा बताएंगे। तो पहले हमने वो सारे जो अनुभाग इकट्ठे स्थापित कर दिए, फिर क्या करना, फिर उनमें से सर्वमंद अनुभाग से संयुक्त परमाणु को ग्रहण करके वर्णगंध और रस को छोड़कर केवल स्पर्श का ही बुद्धि से ग्रहण कर उसका विभाग रहित छेद होने तक प्रज्ञा के द्वारा छेद करना चाहिए। बुद्धि द्वारा उसके हम विभाग करेंगे, छेद करेंगे। उस नहीं छेदने योग्य अंतिम खंड की अविभाग प्रतिच्छेद संज्ञा है। पश्चात उक्त प्रमाण से सब स्पर्श खंडों के खंडित करने पर सब जीवों से अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेद प्राप्त होते। हमने उसे बुद्धि के द्वारा उसके खंड करते गए तो उसको हम अविभाग, जिसका दूसरा खंड नहीं हो सकता है ऐसे खंड को हमने अविभाग प्रतिच्छेद कह दिया। अब ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं वहां पर, तो सब जीवों से अनंत गुणे हैं, उन सभी की वर्ग यह संज्ञा है। इतने अविभाग प्रतिच्छेदों का जो ग्रुप है उसको हमने वर्ग कहा, यानी परमाणु को वर्ग कहते हैं क्योंकि उसमें इतने अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। उसका प्रमाण अनंत होकर भी संदृष्टि में आठ ऐसा ग्रहण करना चाहिए, यानी जो पहले अभी जो हमने है ना, हम कहेंगे वर्ग वर्गणा स्पर्धक गुणहानि वो समझाएंगे, तो ये पहली वर्गणा की बात चल रही है। अब यहां वो पहले निषेक उसको भूल जाओ, अभी पहले समय वाला दूसरे समय वाला, समय की अपेक्षा यहां नहीं है, यहां अनुभाग की अपेक्षा रचना चल रही है। जैसे अपना वो इंडेक्स आपका ऊपर नीचे जाता है ना, तो वहां उसके, हाँ आपको पता है, हाँ वो बराबर समझ में आता है मम्मी जी। तो उसमें जो ऊपर नीचे जो है वो उसका अनुभाग बताता है ना, उसकी वैल्यू बताता है। वो मैच्योरिटी बताने वाला ऐसा कुछ उसमें नहीं ना, वो तो वैल्यू बताती है अभी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ये वैल्यू बताने वाले हैं। अभी इसको भी हम परमाणु के रूप में इसे करेंगे तो इसमें विशिष्ट नंबर ऑफ परमाणु है। ये वर्गणा हमने आड़ी ऐसे ही दिखाएंगे जैसे हमने वहाँ निषेक दिखाए थे। तो ये जो वर्गणा है उसमें वर्ग कितने हैं, परमाणु की संख्या कितनी है और उसमें अनुभाग कितना है। तो एक एक परमाणु में अनुभाग हमने पहले मान लिया 8 है और ऐसे 4 वर्ग है। यहाँ पर 4 परमाणु हम मान लेते हैं, ये संदृष्टि बता रहे हैं। 8 अनुभाग है तो 8 एक वर्ग का अनुभाग कितना है, 8 एक वर्ग है, 8 दूसरा वर्ग है, 8 तीसरा वर्ग है, 8 चौथा वर्ग है। इतनी समझ में आई बात, पूरे हम पढ़ेंगे ना फिर और ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो पुनः उसी परमाणु पुंज में से हमने पहले क्या किया था, सभी परमाणुओं को इकट्ठा लिया था। अभी उसमें से जिसमें 8 अविभाग प्रतिच्छेद है वो उनका ग्रुप अलग निकाला और उसको हमने पहले स्थान पर रखा 8 वाले। अब क्या करना, अब ये इसी यही जो परमाणु पुंज है उसमें से अब 9 वाले निकालना है। देखो नहीं, पहले तो एक ही 8 निकाला, अभी यहां तो अभी इनकी बात पूरी नहीं हुई। पुनः उसी परमाणु पुंज में से उसके सदृश दूसरे परमाणु को ग्रहण कर उसके स्पर्श के पहले के समान प्रज्ञा के द्वारा छेद करने पर यहां भी उतने ही अविभाग प्रतिच्छेद उपलब्ध होते हैं। ये छेद जो है ना वो सादा छेद लिखना। के पहले भी छेद के क्या लिखा था, छेद करना। हाँ पहले आया सादा ही छेद था। देखो उन्होंने क्या किया, पहले परमाणुओं को देखा, उसके छेद करने पर किसी परमाणु में 8 हमको प्रतिच्छेद मिले, अविभाग प्रतिच्छेद, उसको यहां पर लिया। फिर इस परमाणु पुंज में से उतने ही समान अनुभाग वाला 8 वाला और एक मिला, उसको यहां पर रखा। बराबर। अब देखो शंका, अभी शंका चलेगी फिर आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, अविभाग प्रतिच्छेदों का छेद नहीं है, नंबर ऑफ अविभाग प्रतिच्छेद जीव राशि से अनंत गुणे हैं। ये हमने यहाँ जो परमाणु लिया है, यहाँ जो हमने 8 कहा है वो 8 अविभाग प्रतिच्छेद है, उस 8 यूनिट्स है। उसके बदले में एक्चुअली में कितने, यथार्थ में कितने हैं, मिनिमम पॉसिबल, जीव राशि से अनंत गुणे हैं। 8 संख्या क्या डिनोट करती है, जीव राशि से अनंत गुणे। क्या है, किसकी बात चल रही है, अविभाग प्रतिच्छेदों की। जैसे हमने 1 ग्राम ये यूनिट बनाया तो ऐसे कितने ग्राम है वहां पर, मान लेते 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम का एक हुआ, 1000 ग्राम का दूसरा, 1000 ग्राम का तीसरा, 1000 ग्राम का चौथा। अभी इसमें ये परमाणु पुंज में से हमने सब में देखा तो जघन्य में जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद कितना मिला, 8 मिला, जो एक्चुअल में जीव राशि से अनंत गुणा है। तो वो 8 वाले एक परमाणु को ग्रहण किया हमने, यहाँ रखा, दूसरे उतने ही 8 वाला दूसरा एक परमाणु मिला, उसको हमने उसके बाजू में रख दिया। अब तक इतनी बात हुई, अभी शंका करके शंका पहले सॉल्व करेंगे ना फिर आगे बढ़ेंगे। उसके पहले अपनी शंका। तो कहते हैं नहीं छिदने योग्य परमाणु का छेद कैसे किया जा सकता है। परमाणु में हमने अविभाग प्रतिच्छेद ऐसे छेद किए ना, तो ये परमाणु को कैसे छेदा। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि उसका केवल द्रव्य ही अच्छेद्य है, गुण नहीं। जैसे हम भेदा भेदात्मक कहते हैं ना, ऐसे गुण के भाव की अपेक्षा उसके भेद तो हो सकते हैं ना, उसके यूनिट तो बन सकते हैं। जब हम कहते केवल ज्ञान में कितनी पावर है, अनंत है, पर्याय ज्ञान वाला मिनिमम ज्ञान में भी कितनी पावर है, अनंत है, अनंत विभाग प्रतिच्छेद है। वैसे यहाँ जघन्य में जघन्य अनुभाग जो है वो कितना है, तो अनंत है। शंका, परमाणु के गुणों में वृद्धि एवं हानि होने पर उसका परमाणुपना कैसे विरोध को नहीं प्राप्त होगा? गुणों में ने वो ये गुण की बात ले रहा है। समाधान, नहीं, क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा वृद्धि व हानि के अभाव का आश्रय लेकर उसका परमाणुपना स्वीकार किया गया है। यानी द्रव्य में वृद्धि हानि नहीं होती है, द्रव्य तो द्रव्यपण वैसा ही रहता है, परंतु उसका जो गुण है, उसका जो भाव है, यानी यह गुण ने पर्याय समझनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग जो स्पर्श तो गुण लिया, और उसके तो यहाँ पर उसके भाव यानी उसका पर्यायपना ले लेना, उसके प्रकट अंश की बात है, प्रकट अंश को यहाँ गुण कहा है। यह द्वितीय वर्ग अनंत होता हुआ भी संदृष्टि में आठ संख्या रूप है। यह आपके प्रश्न का उत्तर, ये जो अनंत को ही हमने यहाँ आठ मान लिया है, पहला परमाणु भी आठ वाला था, अभी दूसरा भी आठ वाला मिल गया, इसे पूर्व वर्ग के पास में स्थापित करना चाहिए, तो आठ को दो बार रखा। आठ का अर्थ होता है एक परमाणु जिसमें आठ अविभाग प्रतिच्छेद है, आठ परमाणुओं की बात नहीं है, अविभाग प्रतिच्छेद आठ है। इस क्रम से गुण की अपेक्षा पूर्व परमाणु के सदृश एक एक परमाणु को लेकर उन ग्रहण किए गए परमाणुओं में स्थित स्पर्श के अविभाग प्रतिच्छेद करने पर एक एक वर्ग उत्पन्न होता है। अभी ये परमाणुओं को हमने इकट्ठा, ये आठ 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 वाला जो एक एक परमाणु है उसको हम एक एक वर्ग कहेंगे। यहां तक बात समझ में आई ना? हाँ। इस क्रिया को, ये जो परमाणु का पुंज हमने पूरा बंद के समय में जो बंधा था उसको पूरा ही लिया है, तो उसमें से सभी जघन्य जघन्य वाले जो समान अविभाग प्रतिच्छेद, एक का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उन सबको हमने इकट्ठा कर दिया। इस क्रिया को जघन्य गुण वाले सब परमाणुओं के समाप्त होने तक करना चाहिए। यानी उस परमाणु पुंज में जघन्य अनुभाग वाले जितने परमाणु थे उन सबको हमने इकट्ठा ला के रख दिया, उसका एक ग्रुप बनाया। वो परमाणु जहां जीव के प्रदेशों में वहां पर है, हो ये अपनी बुद्धि में लेना है सबको। हाँ, ऐसा करने पर अब कितने उसमें वर्ग आएंगे? एक समय में तो अनंत वर्ग ग्रहण किए हमने, अनंत परमाणु को ग्रहण करें, परंतु जघन्य में जघन्य अनुभाग वाले ऐसे परमाणु कितने हैं? तो कहते हैं अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण वर्ग प्राप्त होते हैं। इतने तो वर्ग है, परमाणु है, उनका प्रमाण संदृष्टि में इस प्रकार है। उस अनंत के लिए चार ही लिया उन्होंने, क्योंकि आठ को चार बार रखा है। ये अभी हमने देखा आठ क्या है, अविभाग प्रतिच्छेद, और उसको आठ को हमने रखा है ना, एक परमाणु को रखा, दूसरी बार आठ लिखा है ना, और एक परमाणु जिसमें आठ अविभाग प्रतिच्छेद है, तीसरी बार आठ रखा तो उसके और एक अविभाग परमाणु आठ अविभाग प्रतिच्छेद वाला, और चौथी बार भी लिखा हमने। यहाँ दिखाने के लिए चार ही बार लिखा है, पर एक्चुअल में कितने हैं? अभव्यों से अनंत गुणे, सिद्ध राशि से अनंत विभाग। वो सिद्ध राशि पूरे जीव राशि से छोटी है ना? हाँ, तो उसका जो कहते, इसलिए पूरे जीव राशि के लिए यहाँ आठ लिखा, उससे अनंत गुणे वाले को, और सिद्धों के अनंत विभाग के लिए चार ही लिया, चार बार ही परमाणु लिखे, क्योंकि संदृष्टि समझाएंगे कैसे? बड़ी संख्या लेंगे तो इतनी तो बुद्धि चलने वाली नहीं अपने को, संदृष्टि तो उसका अपने एहसास होना चाहिए, इसके लिए यहाँ रखिए। अब आगे, इन सबों की द्रव्यार्थिक ने का अवलंबन करने पर वर्गणा संज्ञा है, इसको हम कहते हैं वर्गणा। वर्गणा किसको कहना? वर्गों के समूह को वर्गणा कहा, परंतु उसमें एक कंडीशन चाहिए, समान अविभाग प्रतिच्छेदों वाले वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। यह अनुभाग की बात चल रही ना, वर्ग वर्गना स्पर्धक वो अनुभागों में लगाएंगे और वो जो निषेक विषेक है वो स्थिति में चलेगी। इतनी ख्याल में आया? हम पहले समय ज्ञान चंद्रिका पढ़ते थे, क्या पढ़ रहे, पढ़ लेना ऐसा करते थे बस। अभी थोड़ा थोड़ा समझता है। देखो शंका, वर्गों की वर्गना संज्ञा कैसे हो सकती है? देखो वर्गों को नहीं वर्गना कहे, वर्गों के ग्रुप को कहे ना। तो देखो समाधान, नहीं, क्योंकि वर्ग और वर्गना में भेद उपलब्ध होता है। वर्गों के समूह का नाम वर्गना है, क्योंकि हमने समान 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 देखे ना सभी, और उन्हीं के असमूह का नाम वर्ग है। अकेला एक एक परमाणु ले तो उसको हम वर्ग कहेंगे, और समान समान अविभाग वाले पर वर्गों को इकट्ठा लेंगे तो उसको वर्गना कहेंगे। वर्गना एक होती है परंतु वर्ग अनंत होते हैं, इस कारण वे दोनों एक नहीं हो सकते। जैसे हम कहते हैं द्रव्य और गुण में भेद है कि अभेद है, हाँ तो ये तो वहां कथनचित भेद भी है ना, तो द्रव्य एक है गुण अनंत है, ऐसे वर्गना एक है और उसमें वर्ग अनंत होते हैं। परंतु यदि वर्गों से वर्गना का अभेद कहना चाहते तो वर्गना भी अनंत ही होगी, क्योंकि वर्गों के भेद से उनसे अभिन्न वर्गना का भी भेद पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? वर्गों के भेद से वर्गनाओं का भेद होता है ना। अभी हमने वो आठ वाली वर्गों की वर्गना देखी जिसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है, ऐसे नौ वाले वर्गों की भी दूसरी वर्गना होगी, दस वाले की एक वर्गना होगी, ऐसी वर्गनाएं भी अनंत होगी। तो वर्गों के भेद से अविभाग प्रतिच्छेद जो अलग अलग है उसकी अपेक्षा से वर्गनाएं भी बहुत अलग अलग होगी। ख्याल में है ना, जिसमें जगन्य में मिनिमम पॉसिबल अविभाग हमने यहाँ आठ समझा है, तो आठ वाले वर्गों के समूह को हमने एक वर्गना कही, नौ वाले वर्गों के समूह को दूसरी वर्गना कहेंगे, दस वाले को तीसरी वर्गना कहेंगे, ग्यारह वालों को चौथी वर्गना कहेंगे, तो वर्गनाएं भी ऐसे अनंत होगी। देखो यदि वर्गों से वर्गना का अभेद कहना चाहते हैं तो वर्गनाएं भी अनंत ही होंगी, क्योंकि वर्गों के भेद से उनसे अभिन्न वर्गना का भी भेद पाया जाता है। वर्गों में जितने अविभाग प्रतिच्छेद अलग अलग हो गए तो उसकी अपेक्षा से वर्गनाओं के भी हमने ये पहली ये दूसरी तीसरी चौथी ऐसा कहेंगे। इतनी बात ख्याल में? अब आगे, इसलिए वर्गना एक भी होती है और वर्गों के बराबर भी, इस विषय में कोई एकांत नहीं है। वो भी के बाद कॉमा लगाना, वर्गों के बराबर भी, यानी एक भी होती है और वर्गों के बराबर भी, इस विषय में कोई एकांत नहीं है। द्रव्यार्थिक ने का अवलंबन करने पर यह एक वर्गना है और पर्यायार्थिक ने का अवलंबन करने पर यह अनंत वर्गनाएं हैं। इसलिए इसको पृथक स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार स्थापित करके पुनः पूर्वोक्त पुंज में से अन्य परमाणु को ग्रहण कर, अच्छा उन्होंने इसी को अनंत वर्गना कह दिया, जो एक आठ 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 को एक वर्गना को ही पर्यायार्थिक ने से इसको अनंत कह दिया। अब पूर्वोक्त पुंज में से अन्य परमाणु को ग्रहण कर बुद्धि से छेद करने पर, अब पूर्वोक्त पुंज से एक परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा इसमें एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। पहले जो वर्गना में अविभाग प्रतिच्छेद आठ था, अब हमने कोई अन्य परमाणु लिए उसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा पाया जाता है, यानी उसमें अविभाग प्रतिच्छेद नौ होगा, ते नौ पाए जाते हैं। यह यहां पर वर्ग है, अभी ये नया वर्ग शुरू हो ना, पहले का वर्ग जो आठ वाला था, अब यहाँ का ये नया वर्ग नौ वाला है, अतः उसे पृथक स्थापित करना चाहिए। पुनः इस क्रम से तत्समान यानी उसी के समान सदृश एक एक परमाणु को ग्रहण कर, कौन से अभी नौ 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 वाले ही परमाणु ग्रहण करना है, तथा उस एक एक परमाणु के प्रतिच्छेद करके उसके सदृश सब परमाणुओं के समाप्त होने तक, ये पूरा परमाणु पुंज लिया था उसमें जितने सारे समान समान है उस सबको ले लिया, कोई छोड़े नहीं उसमें, तो हमने नौ वाले सारे इकट्ठा करके ले लिए, सब परमाणु के समाप्त होने तक अनंत वर्गों को उत्पन्न करना चाहिए। ये हमने नौ वाले वो लिए, वो भी अनंत है, उनका प्रमाण यह है। तो तीन बार नौ लिखा, पहले चार बार आठ लिखा था ना। अभी ये जो एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा वाले जो परमाणु है वो थोड़े कम है अनंत, परंतु पहले अनंत की अपेक्षा थोड़े कम है। वहां चार बार आठ लिखा था, यहां तीन बार नौ लिखा। तो इसके ऊपर हम ये तीन बार नौ लिखेंगे। ऐसा पहले चार बार आठ लिखा था ना, अभी तीन बार नौ लिखा। यहां भी पहले के ही समान यह वर्गणा एक भी है और अनंत भी है, ऐसा कहना चाहिए। वर्गों के समूह को वर्गणा कहेंगे तो एक होता है, और एक एक वर्ग की अपेक्षा कहेंगे तो वर्गणा उसको अनंत कहेंगे। पर्यायार्थिक न्याय से शंका, वर्गणा की एक संख्या को छोड़कर अनंतता प्रसिद्ध नहीं है। प्रतिशंका, आचार्य कहते हैं उसकी एकता कहाँ प्रसिद्ध है। एक और अनेक वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा बता दिया उन्होंने। प्रतिशंका का समाधान, यानी अभी शंकाकार कह रहा है, क्या कहते हैं, वह कषाय प्रावृत के चूर्णी सूत्र में प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां लोक पूर्ण अवस्था में योग की एक वर्गणा होती है ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ समझ में आता है, किस वर्गणा की बात है वहां पर? किसका, किसका ग्रुप, कौन सा अनुभव, कर्मों की, कौन सी अनुभव शक्ति की बात है? योग समान हो जाता है, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में योग की वेरिएशन होती है, सब प्रदेशों में समान योग कभी नहीं पाया जाता, एक्सेप्ट ये केवली समुदाय की लोकपूर्ण अवस्था में सभी आत्म प्रदेशों में एक ही योग होता है और उसको एक वर्गणा कहा है। ये बात वो प्रस्तुत करता है प्रूफ, लोकपूर्ण समुद्घात के ध हुआ है होने पर, समुद्घात करना, समस्त जीव प्रदेशों में एक विकल्प रूप योग होने से वर्गणा एक होती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यह शंकाकार कह रहा है, शंका का समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक वर्गणा में कहीं पर अनेकत्व का भी व्यवहार उपलब्ध होता है। यह अनेकत्व का तो व्यवहार किया, वर्ग अनेक है तो उसके आधार से उसका उपचार हुआ कि वर्गणा को यह अनेक कह दिया। नहीं समझे, हम द्रव्य पर ही एक और अनेक घटित करते ना, द्रव्य ही एक है और द्रव्य ही अनेक है, अनेक क्यों कहा, गुण की अपेक्षा उसको अनेक कहेंगे, वैसे यहाँ वर्ग की अपेक्षा उसको वर्गणा को ही अनेक कहने में कोई विरोध नहीं है, वो व्यवहार है, उपचार है। शंका, वह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, एक प्रदेश वाली वर्गणा कितनी है? अनंत है। अब एक प्रदेश वाली वर्गणा तो हो नहीं सकती, तो एक प्रदेश वाला तो वर्ग ही हो सकता है, तो जब जहां ये कहा है एक प्रदेश वाली वर्गणा अनंत है, वहां वो वर्गों की अपेक्षा से उसको वर्गणा को अनंत कहा है। दो प्रदेश वाली वर्गणा अनंत इत्यादि वर्गणा व्याख्यान से जाना जाता है। यदि कहा जाए यह वर्गणा व्याख्यान अप्रमाण है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्याख्यान रूप से चूर्णी सूत्र भी समान है, इसलिए उसकी भी अप्रमाणता का प्रसंग आता है। क जो जरूरत नहीं, अप्रमाणकता ऊपर क्या लिखा है, अप्रमाणतप प्रसंग आदो, अप्रमाणता चाहिए, क की जरूरत नहीं है बीच में। अब ये शंका समाधान हो गया, अब फिर पुनः इसको उठाकर प्रथम वर्गणा के आगे रखने पर द्वितीय वर्गणा होती है। पहली वर्गणा हमने आठ 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 वाली देखी थी, अभी हमने नौ 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 तीन बार उठाए ना, उसमें से परमाणु सदृश परमाणु ले लिए सारे, उसको उठाकर हमने आठ के आगे जो ऐसे अभी हमने यहाँ लिखे, नीचे के लाइन में आठ चार बार लिखो, उसके ऊपर नौ तीन बार लिखो, ये दूसरी वर्गना हुई, इसको द्वितीय वर्गना कहा। इस प्रकार उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर यानी आगे आगे, ऊपर ऊपर, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद की अधिकता से, यानी एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हुए क्रम से आगे आगे अभव्य सिद्धों से अनंत गुणी और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र वर्गणाओं के उत्पन्न होने तक तृतीय चतुर्थ व पंचम आदि वर्गणाओं को उत्पन्न कराना चाहिए। इतनी मात्र वर्गणाओं को ग्रहण कर जघन्य स्थान का एक स्पर्धक होता है। अब हमने पहले वर्ग क्या है देखा था, वर्गणा देखा कि वर्गों के समूह को वर्गणा कही। एक वर्गणा से दूसरी वर्गणा में एक अविभाग प्रतिच्छेद जाता है, अधिक है। फिर तीसरे में ये 8 से 9 हुआ, फिर 10 हो जाएंगे, उसमें परमाणु और कम हो जाएंगे, फिर 11 हो जाएंगे। अभी हम 4 ही लिखेंगे, यहाँ 4 बार ही लिखेंगे, क्योंकि हमको जितने बार हमने यहाँ लिखे थे ना, अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंत विभाग, जघन्य वर्गणा में वर्ग थे, अब उतनी ही बार हम ऊपर चढ़ गए, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गया है, ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हो गए। अब इस सबको मिलकर नाम क्या है, एक स्पर्धक। जघन्य से शुरू किए तो इसको हम जघन्य स्पर्धक कहेंगे, पहला स्पर्धक। हाँ, जघन्य स्पर्धक होता है। शंका, स्पर्धक संज्ञा कैसे है, उसको स्पर्धक क्यों कहा, नाम क्यों दिया स्पर्धक। क्रम से जो स्पर्धा करता है अर्थात बढ़ता है वह स्पर्धक है। अच्छा नाम है, आजकल तो सभी स्पर्धक ही है ना सब एक दूसरे की स्पर्धा करते रहते किसके पास वो पैसे वाला अनुभाग ज्यादा हो जाए। शंका, वह एक कैसे है, वो स्पर्धक को एक क्यों कहा है। समाधान, क्योंकि उसमें अंतर देकर वृद्धि नहीं उपलब्ध होती, अतः वह एक है। क्या कहा, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये अंतर नहीं दिया है, कंटिन्यूस एक वर्गणा से दूसरे में एक एक ही अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ा है, ऐसे वर्गणाओं के समूह को हम स्पर्धक कहेंगे। ये बात ख्याल में आई इतनी, क्योंकि दूसरे स्पर्धक से नई बात आने वाली है अभी। हाँ देखो, हमने सबसे कम में सबसे मिनिमम पॉसिबल अनुभाग वाले परमाणु को इकट्ठा कर दिया, उसकी एक वर्गणा बनी, जिसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है ऐसे परमाणुओं का ग्रुप लिया, उसको हमने दूसरी वर्गणा की, और एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है तीसरी वर्गणा, तीसरी चौथी पांचवी, कितनी होनी, अनंत वर्गणाएं होगी। उन अनंत वर्गणाओं के ग्रुप को हमने एक स्पर्धक कहा। स्पर्धक क्यों कहा, तो उसमें वो जो अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता गया है वो विदाउट एनी गैप एक एक ही बढ़ता गया था, तो इतने हमारे पास मिल गए भी। अब क्या कहते हैं आगे देखो, उसमें अंतर नहीं है, एक एक ही वृद्धि देखी जाती है, एकदम ऐसे जंप नहीं है, जंप होने के बाद वो द्वितीय स्पर्धक आएगा। नहीं, एक एक समय बढ़ता गया वहां, परमाणु तो कम हो गए होते गए थे। हाँ, एक एक अनुभाग वर्गणाएं में। हाँ देखो, अभी तो हम पहले भी ऐसा ही कहते थे ना, 100 से लेकर 199 तक, ऐसे नहीं, अभी बीच में गैप आएगा और एकदम जंप मार के 8 से 16 हो जाएगी, यहाँ पर डबल हो जाएगा अनुभाग। अच्छा, बीच में अंतर पड़ता है, क्योंकि बीच में अंतर नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, देखो हमने क्या देखा अभी अभी, देखो अभी अभी यहाँ का ही उदाहरण लेते हैं। अभी यहाँ हमने अविभाग प्रतिच्छेद कितने लिए हैं, 8 लिए, और नंबर ऑफ वर्ग कितने लिए, 4 लिए। तो 4 क्या है, अभव्यों से अनंत गुणा, सिद्धों से अनंत विभाग, उतनी ही वर्गणा होती हमने कहा, तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 हो गए। यदि हम 8 से 16 होने तक गिनेंगे तो 12, 13, 14, 15 ऐसा लेना पड़ेगा, तो ये सारों की संख्या भी 8 हो जाएगी, यानी जीव राशि से अनंत गुणे वर्गणा हो जाएगी एक स्पर्धक में, पर ऐसा नहीं है। ख्याल में आता है ना, यहाँ तो आठ अविभाग प्रतिच्छेद वाले वर्गणा वर्ग लिए थे हमने, और वर्गों के कितने वर्ग लिए, पहली वर्गणा में चार लिए थे। अविभाग प्रतिच्छेद डबल होने के लिए अगर कंटिन्यूअस जाते तो आठ वर्गणाएं चाहिए थी, पर यहाँ चार ही वर्गणा है, तो आठ से नौ, नौ से दस, दस से ग्यारह हो गया। अब ये बीच में इसमें तो कोई अंतर नहीं है, परंतु ग्यारह के बाद अंतर रखकर आठ से डबल हो जाएगा जहां पर, वहां से दूसरा स्पर्धक शुरू हो जाता है। सोलह से फिर सोलह सत्रह अठारह उन्नीस ऐसा हम गिनेंगे, वो दूसरा स्पर्धक कहलाएगा। बारह तेरह चौदह पंद्रह वाले कोई अभिभाग वाले वो कोई वर्गणाएं वहां नहीं पाई जाएगी, परंतु आठ से ग्यारह तक की वर्गणाओं के समूह को हमने स्पर्धक कहा। वैसे सोलह सत्रह अठारह उन्नीस वाले वर्गणा जो है उनको हम दूसरा स्पर्धक कहेंगे। तीसरे स्पर्धक में आठ से तीन गुना, सोलह दुनी बत्तीस नहीं, वो गुणहानि नहीं है, यहाँ तो स्पर्धक है, चौबीस हो जाएंगे, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना, इस तरह से। हाँ, बीच में अंतर होगा, परंतु वो जो मिनिमम से जो एक एक स्पर्धक में वर्गणा है उसमें कोई अंतर नहीं। बीच में एक स्पर्धक से दूसरे स्पर्धक में वो बीच में अंतर पड़ेगा। हाँ, वर्गणा की समान संख्या समान ही होती है, नहीं गैप, नहीं गैप नहीं पड़ेगा, उतना गैप भी उतना रहेगा और वर्गणाएं भी उतनी रहेगी। अनुभाग शक्ति एक एक से बढ़ती है, कितनी बार बढ़ी उनकी संख्या समान है सब जगह। अब ये भी जो टेबल है ना मूल पुस्तक में, उन्होंने इसे आड़ा समझाया है, एक स्पर्धक दूसरा स्पर्धक, फिर दूसरा गुणानि का, तीसरा गुणानि का, और आपने कहा था आड़ा प्रिंट नहीं हो सकता, इसलिए उसकी रचना ऐसे अलग करके दिखाई है, ऐसे छापेंगे अभी उसको। हाँ, एक मिनट है, अच्छा। अरविंद कहते थ्री मिनट लेट चालू किया था, अभी एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। हाँ हाँ, देखेंगे पूरा ये वर्ग वर्गणा स्पर्धक अनुभाग। देखो समाधान, क्योंकि उसमें अंतर देकर वृद्धि नहीं उपलब्ध थी। एक स्पर्धक में जितनी वर्गणाएं उसके अंदर कोई अंतर नहीं है, पूरा एक ग्रुप वर्गणाओं का और दूसरा ग्रुप आगे की स्पर्धक का, उसमें अंतर होगा, वो तो अभी उन्होंने अभी बताया नहीं है, ये हम पहले ही बता रहे हैं, तो वो पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। देखो शंका, चूंकि प्रथम वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह से जो हमने आठ माना है, द्वितीय वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह अनंत अविभाग प्रतिच्छेदहीन है, तथा द्वितीय की अपेक्षा तृतीय भी उनसे विशेष अधिक अविभाग प्रतिच्छेदहीन है। क्या कहना चाहते हैं, यहां अविभाग प्रतिच्छेद आठ है और यहां बढ़कर नौ हो गया। अभी शंकाकार की शंका है, आठ आठ वाले यहां चार परमाणु है, तो पूरा टोटल अनुभाग कितना हुआ, आठ चौक बत्तीस हुआ, और ऊपर नौ वाले तीन ही परमाणु है तो नौत्रिक सत्ताईस हुआ। हाँ, तो वो कहते हैं वो कम हो रहा है, और उसको आप एक स्पर्धक कैसे कहते हो, उसका कहां चल रहा है ना बुद्धि। देखो क्या कहते हैं, प्रथम वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह, पूरा समूह लिया उसने, सभी वर्गों का जो समूह है, उससे द्वितीय वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह अनंत अविभाग प्रतिच्छेदहीन है, हमने देखा ना बत्तीस से सत्ताईस हीन हो गया, तथा द्वितीय की अपेक्षा तृतीय भी उनसे विशेष अधिक अविभाग प्रतिच्छेदहीन है, इसलिए पूर्वोक्त स्पर्धक का स्वरूप नहीं बन सकता। जैसे हमने यहाँ देखा आठ चौक बत्तीस, फिर नौत्रिक सत्ताईस हो गया, बत्तीस से सत्ताईस और सत्ताईस से दैदनी बीस, बीस हो जाएंगे और फिर ग्यारह हो जाएंगे। हाँ, तो ये बन नहीं सकता, क्योंकि उसमें क्रम वृद्धि अथवा क्रमहानि का अभाव है, ये इसको कल ही लेना पड़ेगा, ये प्रश्न को भी फिर लेके फिर दोबारा ले लेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो। विनोद है।